पृष्ठ संख्या 173। 1945 के बाद की दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के लगभग 60 वर्षों में दुनिया में नाटकीय परिवर्तन हुए। विश्व का राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया। इस काल में साम्राज्यवादी प्रभुत्व पूर्ण रूप से समाप्त तो हो गया और विश्व पर यूरोप का वर्चस्व लगभग पूरी तरह समाप्त तो हो गया। 1945 में 50 राष्ट्रों ने मिलकर एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। मार्च 1990 में नामीबिया के आज़ाद होने और उसके बाद सोवियत संघ के टूट जाने से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या बढ़कर 192 हो गई। अधिकांश नए सदस्य मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के ऐसे देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। जर्मनी, जापान और इटली की पराजय तथा ब्रिटेन और फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत होने के बाद लगभग 4 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां बने रहे। यह दोनों देश विश्व के मामलों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे और युद्ध के शीघ्र बाद उभरे दो शक्तिशाली गुटों के मुखिया बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गुट का अगुआ था जिसमें पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल थे। ये देश स्वयं को स्वतंत्र विश्व फ्री वर्ल्ड कहते थे। सोवियत संघ का प्रभाव उस समाजवादी गुट पर था जिसका जन्म पूर्वी एशिया के देशों तथा बाद में चीन और कोरिया में साम्यवादी दलों के सत्तारूढ़ होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इन दोनों गुटों के अंदर और इनके बीच अथवा देशों के समूहों के बीच अनेक परिवर्तन हुए, किंतु 1980 के दशक के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की प्रमुख शक्तियां बने रहे। विश्व के प्रत्येक भाग में व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। अलग-अलग देशों में इन परिवर्तनों की दिशा और परिणाम अलग-अलग रहे हैं, किंतु कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की विश्वन जीन घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को इन परिवर्तनों का प्रमुख दिशा प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें मनुष्य के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। विश्व का लगभग प्रत्येक देश आजाद हो गया है और सिद्धांत रूप में सभी देशों की जनता अपने भाग्य की स्वयं निर्माता बन गई है। यद्यपि प्रमुख रूप से इन परिवर्तनों से राजनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई और सार्वजनीन मताधिकार और प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना हुई, तथापि आज भी बहुत से देशों में सैनिक तानाशाहों, निरंकुशतावादियों और अल्पतंत्रों का शासन बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत लगभग 45 वर्षों तक 1900 के आसपास होने वाले नाटकीय परिवर्तनों का दौर आरंभ होने के पूर्व तक विश्व की दो मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को पूंजीवादी और समाजवादी कहा जाता था। दोनों में से अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं परिवर्तन हुए। उन्नत पूंजीवादी प्रणाली का पालन करने वाले देशों में सामान्यतः आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को मानकर और महत्व दिया जाता है। इसका श्रेय अंशतः श्रमिक संघों तथा श्रमिक और समाजवादी आंदोलनों को जाता है। उन्नत पूंजीवादी देशों में से अधिकांश देश जन कल्याण की नीतियों पर चलते रहे हैं, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इस व्यवस्था से जुड़े जनसाधारण के दुख दैन्य में कमी आई है। सोवियत संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पूर्वी यूरोप में जिस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था कायम हुई, उसे कुछ वर्षों तक पूंजीवादी व्यवस्था का एक अस्पृहणीय विकल्प माना जाता है। इस व्यवस्था में जिसे अक्सर वास्तविक रूप में विद्यमान समाजवाद कहा जाता है, में अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन अंततः यह बिखर गई। नव स्वतंत्र देश अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण करने में जुटे रहे, लेकिन उनमें से अधिकतर देशों में आज भी औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिला पिछड़ापन कायम है। विश्व की अर्थव्यवस्था लगातार असमानता से ग्रस्त रही है, जो इन देशों के पिछड़ेपन की दलदल से ना निकल पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। इन देशों की तीसरी दुनिया कहा जाता है, तीसरी, दुनिया के कुछ देशों ने काफ़ी आर्थिक प्रगति की है। इनमें चीन में बहुत आर्थिक विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो पिछले 20 वर्षों में एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उदयीमान हो रहा है। गत 50 वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने खास तौर से उन्नत पूंजीवादी देशों का कायाकल्प कर दिया है। संयुक्त राज्य के अतिरिक्त जापान और जर्मनी प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं, लेकिन प्रौद्योगिक प्रगति के कारण आर्थिक दृष्टि से विकसित और तीसरी दुनिया के देशों, जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है, के बीच का अंतर और भी बढ़ गया है। विकसित और विकासशील, इन दो हिस्सों में विश्व का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया की एक प्रमुख विशेषता बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल तनावों और संघर्षों का काल रहा। युद्ध के दौरान फांसीवाद को परास्त करने के लिए बनाए गए गठबंधन युद्ध समाप्त होते ही टूट गए। उसके पश्चात पश्चिमी गुट और सोवियत गुट कहे जाने वाले दो समूहों के बीच तनातनी का दौर आरंभ हुआ। विवाद का यह दौर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 वर्षों तक चला, शीत युद्ध के नाम से विख्यात है। इस दौर में दोनों गुटों में विनाशकारी शस्त्रास्त्रों का भंडार जमा करने की होड़ शुरू हो गई, जिससे मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। विश्व के विभिन्न भागों में कई लड़ाइयाँ छिड़ गई। यद्यपि इन लड़ाइयों में दोनों परस्पर विरोधी गुटों के देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल थे, तथापि ये लड़ाइयाँ अस्थानीय ही बनी रही। कई बार ऐसे प्रसंग आए जब दुनिया विनाश के कागार पर पहुंच गई, किंतु दुनिया ने किसी तरह स्वयं को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल की एक खास विशेषता एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय था। लैटिन अमेरिका के अनेक देशों सहित एशिया तथा अफ्रीका के आज़ाद देश विश्व के मामलों में स्वतंत्र भूमिका निभाने का आग्रह लेकर चले। शीत युद्ध के काल में उनके द्वारा किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होने के निर्णय के शांति का वातावरण तैयार करने में सहायता की। इस देशों के एक साथ हो जाने से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, जिसने दुनिया में तनाव कम करने, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद को समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास का मुद्दा सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय तनावों के वातावरण में कमी आने लगी, लेकिन अब निश्चित रूप से 1990 के दशक को निश्चित रूप से शीत युद्धोत्तर काल कहा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद तनावों का वह काल समाप्त हो गया जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुआ था। यह कहना कठिन है कि इसके बाद दुनिया में सचमुच शांति का दौर स्थापित होने जा रहा है। शीत युद्धोत्तर काल विवादों और संघर्षों से मुक्त नहीं रहा। याद रखना होगा कि शीत युद्ध के दौरान और बाद में अधिक से अधिक विनाशकारी अस्त्र जमा करने की होड़ ने विश्व शांति के प्रयासों के सामने अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। केवल युद्धों से बचे रहकर ही नहीं, बल्कि सच्चे निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विश्वव्यापी प्रयासों से ही विश्व में शांति कायम की जा सकती है। 1980 के दशक की समाप्ति के बाद दुनिया में हुए परिवर्तनों में से कुछ को दूरगामी महत्व का कहा जा सकता है, क्योंकि उनके साथ विश्व इतिहास के एक नए युग का आरंभ हुआ। एक राज्य के रूप में सोवियत समाजवादी गणतंत्रों के संघ के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। जिन 15 गणतंत्र के संघ से मिलकर सोवियत संघ बना था, वे अब स्वतंत्र राज्य बन गए थे। इन राज्यों और साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी दलों का शासन समाप्त हो गया था। इन देशों में जिस प्रकार की समाजवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना की गई थी, वह साम्यवादी शासन की समाप्ति के साथ ही धराशायी हो गई। रूसी क्रांति के बाद से ही सोवियत संघ विश्व राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में काम करता रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह एक दुर्घर्ष गुट का अगुआ था और उसे पूर्वी यूरोप के देशों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की सैनिक शक्तियों तथा राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए एक जबरदस्त चुनौती माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व इतिहास की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे सोवियत संघ की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका के उल्लेख के बिना भली भांति समझा जा सकता हो। सोवियत संघ के टूटने का सबसे अस्पष्ट परिणाम यह हुआ कि शीत युद्ध समाप्त हो गया।